समय सार लेक्चर नंबर 848 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः प्रणामो अरिहंताणम्
नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे
वन्दितसंवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिमते ओचामि समयपाहुड
मिनमो सुदकेवलीभणितम्
यह समय सार के बाद जो 47 सत्यां लिखी हैं, जो अमृत चंद्राचार्य के परिशिष्ट में आई हुई हैं, उसमें से अभी तक हमने पहली 9 शक्तियां देखी हैं। आज हम सर्वज्ञत्व शक्ति नाम की जो 10 नंबर की शक्ति यहाँ पर दी गई है उसको हम देखेंगे।
देखो कल छठे देवलोक की बात आई थी ना, छठा देवलोक माँ, तो छठे में तो शतार सहस्रार को ही लेना, क्योंकि वहाँ शुक्ल लेशा के जघन्य अंश सहित उत्पन्न होते हैं। वहाँ होते तो मेजॉरिटी तो पद्म लेशा वाले हैं, उत्कृष्ट अंश, परंतु शुक्ल लेशा के जघन्य अंश सहित वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। तो कल जो छठा देवलोक माँ बात आई थी, शतार और सहस्रार यानी 11वां 12वां, यानी शुक्ल
सम्यक दृष्टि होते हैं।
हाँ, शुक्ल लेशा के जघन्य अंश।
ये कहाँ पर आया था?
ये इसी पेज पर ऊपर से चौथी लाइन में देखो, तीसरी लाइन में भी है। वहाँ कहते कि शुक्ल लेशा रूप परिणाम तो अभविनयपन था, बहु उजड़ा अति मंद कषाय रूप परिणाम ते शुक्ल लेशा छे। शुक्ल लेशा वालो जीव छठा देवलोक मां जाए छे, अने वो तो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। और ऊपर जनारा जीव ने तो घना ऊंचा शुक्ल रेशा ना शुभ भाव, एने वो तो द्रव्यलिंगी मुनि होने चाहिए, भावलिंगी तो जा ही सकते हैं। तो
11 और 12 दोनों में जाएंगे ना,
11 और 12 छठा देवलोक मां समय दृष्टि जीव पण जाए तो शुक्ल रेशा ना तेने परिणाम होय छे। समय दृष्टि जाए या मिथ्या दृष्टि जाए, शुक्ल रेशा का परिणाम वहां से शुरू होता है, तो वहां जघन्य अंश सहित वहां जा सकते हैं। कल बात आई थी ना छठा देवलोक क्यों लिया, तो छठी यानी दो दो की जोड़ी लेना, छठा युगल लेना। हाँ, क्योंकि पहला और दूसरा स्वर्ग एक लेवल पर है, 11वां 12वां शतार और सहस्रार। अब सर्वज्ञत्व शक्ति पढ़ेंगे। देखो यहाँ जो शक्तियां है ना, जैसे पहले दृशी शक्ति है, परंतु उसमें कितनी शक्ति भरी है तो सब कुछ देख ली। जैसे ज्ञान शक्ति भी ली और सर्वज्ञत्व शक्ति भी ली, तो दृश्य शक्ति है सामान्य में बताया उसका स्वरूप, और उसके और डिटेल में जाके सर्वदर्शित्व बताई। अब हमने ज्ञान शक्ति भी देखी थी, अब यहाँ सर्वज्ञत्व शक्ति लेंगे, और उसमें भी वहाँ आत्म दर्शनमयी कहा था, यहाँ आत्मज्ञानमयी कहेंगे।
अभी आपका जो प्रश्न है उसमें अभी आपको और हमको भी दर्शन शक्ति चल रही है, किसी सम्यक दृष्टि को भी चल रही है, चौथे गुण स्थान वर्ती, तो वो कितने पदार्थों को जानेगा, अभी जानने की बात कर रहा हूं मैं, मान लो 1000 पदार्थों को जानता है और 10,000 लाख 2 लाख पदार्थों को जानता है, लेकिन जो सर्वदर्शित्व सहित वाला जीव होगा वह पूरे लोकालोक को जानेगा। ये उसमें पहला डिफरेंस है। दूसरी बात यह है कि यहां वो तो अनाकार उपयोग में ही करके उसकी बात कही थी, यानी उसका स्वरूप बताया भेद पाड़िया बिना। अभी यहां पर बताते कि भेद पाड़े बिना ही ये जानेगा, लेकिन लोकालोक को जानेगा, लेकिन वो जानने के लिए उसको उसका उपयोग वहां ले जाना पड़ता है, वो आत्म दर्शनमयी शक्ति है। इतना डिफरेंस उसमें है। दोनों की सम्यक परिणति यानी दर्शन शक्ति की और ये दोनों की जब से सम्यक तो होगा, जब से चालू होगी, लेकिन वो क्षयक्षम रूप है, ये क्षायिक रूप है।
परंतु यहाँ नहीं नहीं सर्वदर्शित्व जो है ना, तो चौथे गुणस्थान वाले को भी सर्वदर्शित्व शुरू हो गया।
वो तो निश्चित रूप से क्षयक्षम भाव से है, लेकिन 13वें गुणस्थान में वही मैं बता रहा। अब आगे बढ़ते हैं।
यानी सर्वदर्शित्व क्यों कहा, उन्हें स्व भी लिया पर भी लिया। मिथ्या दृष्टि को क्या था, अकेले पर में लगा था ना उसका दर्शन जो कुछ है, इसे भी ले सकते उसमें।
अभी यहां कह रहे हैं समस्त विश्वना विशेष भावों ने जानवा रूपे परिणमता एवा आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। अभी पहले क्या लिखा था, हम पेज नंबर 56 पर जरा देखते हैं। वहां सर्वदर्शित्व शक्ति में क्या बताया, सर्व विश्वना सामान्य भावने, और यहाँ क्या बताया है विशेष भावने। वहां देखवा रूपे और यहाँ जानवा रूपे परिणमता एवा, आगे सब वैसे ही है आत्मदर्शन मई तक वही बात है। यानी यहाँ पर भी उन्हें यही बताना है कि ये सबको जो विशेष रूप से जान रहे हैं तो उसको अन्य पदार्थों को जानने के लिए वहां उनको कोई, हमारी भाषा में कहो तो एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, कुछ नहीं, वो तो स्व को ही जान रहे हैं और साथ में ये पर भी जानने में आ रहे हैं। इसको कहेंगे ये जो सर्वज्ञत्व शक्ति वह भी आत्मज्ञानमयी है और सर्वदर्शित्व शक्ति भी आत्मज्ञानमयी है,
दर्शनमयी।
सर्वदर्शित्व दर्श क्या कहा,
आत्मदर्शनमयी।
सर्वदर्शित्व शक्ति भी आत्म
दर्शनमयी और ये
आत्मज्ञानमयी है, बरोबर। हाँ बधु छे, बस एटली ज वात दर्शन शक्ति मा हती। भेद पाड़िया विना सामान्यपने आखु विश्व लोकालोक अस्थि रूपे छे एम दर्शन शक्ति मा देखवा मा आवे छे। आ आत्मा छे, आ जड़ छे, आ सिद्ध छे, आ साधक छे, आ गुण छे, आ पर्याय छे, एवो भेद दर्शन शक्ति नो विषय नथी। विश्वना जे अनंत विशेष भावो छे ते बधाय ने विशेषपणे, एटले केवी रीते भिन्न भिन्नपणे जाने एवी आत्मानी सर्वज्ञत्व शक्ति छे। जाने एटलू ज हो, एमा ठीक अठीक करे ए सर्वज्ञ शक्ति नु काम नथी। समझाणु काई, वहां देखने की बात है, यहाँ जानने की बात है। वहां सामान्य रूप से देखे, यहाँ विशेष रूप से जाने। वह आत्मदर्शनमयी, यह आत्मज्ञानमयी। अध्यात्म पंच संग्रह में कहूं छे के एक समय नमा सर्वने भेद पाड़िया विना अस्तित्व रूपे देखूं ते सर्वदर्शित्व शक्ति नु कार्य छे। अने तेज समय में, यानी यहाँ समय भेद नहीं है, सर्व द्रव्य गुण पर्याय ने भिन्न भिन्न भेद पाड़ी ने जाणवु ते सर्वज्ञत्व शक्ति नु कार्य छे। ते बन्ने पर्याय एक समय में एक ही साथे छे। अहो एक पर्याय एक ज समय में सर्वने सामान्यपने सत्ता रूपे देखे, अने बीजी पर्याय तेज समय में सर्वने વિશેષપણે ભેદ પાડીને જાણે એવો આત્મામાં કોઈ અદ્ભુત રસ છે. ત્યાં નવરસ વર્ણવ્યા છે, તેમાં અદ્ભુત રસનું આવું અલૌકિક વર્ણન કર્યું છે. એ અધ્યાત્મ પંચસંગ્રહ નામ કા જો કોઈ શાસ્ત્ર હૈ ઉસમે ये इनका है ना उज्जवल
दीपचंद जी का है.
दीपचंद जी कासलीवाल का. हाँ,
क्या कहा?
पद्यमय है वो.
देखो प्रत्येक शक्तियां हैं जितनी, तो सभी शक्तियों का हर समय में कार्य तो चलेगा ना, परिणति सबकी चलेगी. आपको क्या आगे का प्रश्न सुनाई नहीं देता? देखो एक पर्याय एक समय में सर्व ने सामान्यपणे सत्ता रूप देखे
वो दर्शन गुण की पर्याय. बीजी पर्याय वो
ज्ञान गुण की पर्याय. बीजी पर्याय ते यानी ज्ञान की पर्याय. बीजा गुण नी पर्याय सर्वदर्शित्व की एक पर्याय, एक गुण की पर्याय. कौन से सर्वदर्शित्व की पर्याय क्या कर रही है? सबको एक ही समय में सबको सामान्यपणे देखे छे. બીજી જ્ઞાન કી સર્વજ્ઞત્વ કી જો સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ હૈ.
બીજી અને ક્રમ સે દૂસરી એસા નહીં લેના.
એક કે બાદ એક વાલી ને ઉસી ગુણ કી ને અન્ય ગુણ કી. હા ઉસી સમય અન્ય ગુણ કી. હા તે સમય મે સર્વ ને વિશેષપણે ભેદ પાડી મે જાણે વો આત્મા માં કોઈ અદ્ભુત રસ છે.
ઉસ અધ્યાત્મ પંચ સંગ્રહ મે નવ રસ का वर्णन है, उसमें यह अद्भुत रस की इस तरह बात बताई है. अहो भगवान आत्मा दिव्य चमत्कार प्रभु दिव्य चित चमत्कार प्रभु छे. एना निर्णय मा अनंता केवड़ी सिद्ध भगवंतो सहित सर्व लोकालोकना विशेष भावो नो निर्णय समाई जाय छे.
देखो क्या कहते हैं, आत्मा के निर्णय में सबका निर्णय होगा. और प्रवचन सार में ऐसा कहे कि सर्वज्ञ के निर्णय करो, देव का स्वरूप निश्चित करो कि अपने मोहन नष्ट हो जाता है. बात एक ही है, आप सर्वज्ञता का निर्णय करो, सर्वज्ञ शक्ति का निर्णय करो, भगवान का स्वरूप का निर्णय करो. तो उस निर्णय में क्या होता है कि उपयोग स्वसन्मुख हो जाता है, करना नहीं पड़ता. वहां कोई ऐसी खींचातानी नहीं कि मुझे अभी किसका लक्ष्य करना क्या है. उस विचार में तद्रूप होकर परिणमते है तो ज्ञान अपने आप को पकड़ लेता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है. यानी सर्वज्ञत्व का निर्णय, सर्वज्ञ का निर्णय कहो, क्रमबद्ध का निर्णय कहो, अपने आत्मा के, यहाँ तो आत्मा की तरफ लिया कि आत्मा दिव्य चित चैतन्य चमत्कार है और उसका निर्णय करो. तो एमा अनंता केवड़ी सिद्ध भगवंतो सहित सर्व लोकालोकना विशेष भावोनो निर्णय समाई जाय छे. अभी पूरा लोकालोक तो उसके ज्ञान में नहीं आ रहा है, परंतु उस संबंधी ये ऐसा ही है ये उसने निश्चित कर लिया. क्योंकि सर्वज्ञ क्या नहीं जानता, सब कुछ जानता है. तो उसने सर्वज्ञ का निर्णय किया है, अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय किया है, तो उसने सब कुछ जान लिया. ऐसा कहेंगे निर्णय हुआ ना उसका, जान लिया ना उस संबंधी उसका निर्णय हुआ कि ऐसा ही है. अब पढ़ेंगे.
देखो पहले लाइन से दोबारा पढ़ते हैं. अहो भगवान आत्मा दिव्य चित चमत्कार प्रभु छे, एना निर्णय मा अनंता केवड़ी अने सिद्ध भगवंतो सहित सर्व लोकालोकना विशेष भावोनो निर्णय समाई जाय छे. आ सर्वदर्शित्व अने सर्वज्ञत्व शक्ति तो મહા આશ્ચર્યકારી છે. આહા સર્વ લોકાલોકના અનંતા ભાવોને દેખે જાણે પણ તે પ્રતિ એટલે જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ જોડવો પડે નહીં. એને લોકાલોક કે અનંત ભાવો કો જાણને કે લિયે દેખને કે લિયે અપના ઉપયોગ વહાં જોડના નહીં પડતા હૈ. અને ક્યાંય પરના આશ્રય નહીં.
પરનો આશ્રય નહીં.
પરના યા પરનો હે?
પરનો પરનો.
अच्छा गजब वात छे प्रभु. चैतन्य स्वभाव में आत्मा नो आ अद्भुत रस छे. आहा जेमा वीतरागी वीरता नो वीर रस ने अनाकुल आनंद रूप शांत रस समाई छे. એવો આત્માનો આ અલૌકિક અદ્ભુત રસ છે. સર્વ લોકાલોકને સત્તા માત્ર સામાન્ય દેખવા રૂપે પરિણમે છે, તે સર્વદર્શિત્વ શક્તિ છે અને તે જ સમયમાં વિશ્વના સમસ્ત વિશેષ ભાવોને ભેદ પાડીને જાણવા રૂપ પરિણમે તે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ છે. અભી યે બાત ક્લિયર હો ગઈ જયબેન? આપને જો પ્રશ્ન પૂછા થા, હા યે દેખો તેજ સમયમાં લખ્યું ને, વિશેષ ભાવો શું? તો વિશેષ ભાવોમાં ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવ, ગુણભાવ, પર્યાય ભાવ, એક એક પર્યાયમાં અનંત વિભાગ પ્રતિચ્છેદ, ત્રણેય કારણા અનંતા કેવળી ભગવંતો સહિત સર્વ અનંતા દ્રવ્યો જાણવામાં આવે છે. આહા હા, કેવળી ભગવાન કે જેમના જ્ઞાનમાં લોકાલોક જણાય એવા અનંતા કેવળી ભગવંતો કેવળ જ્ઞાનની એક પર્યાયમાં જણાય, તે કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયની તાકાત કેટલી?
દેખો ક્યા કહેતે હૈ, એક કેવલી કે જ્ઞાન મેં ક્યા ઝલક રહા હૈ લોકાલોક, હા ના, પણ એક કેવલી કે જ્ઞાન મેં લોકાલોક ઝલક રહા હૈ, એસે એક કેવલી કે જ્ઞાન મેં તીન કાલ કે કેવલ જ્ઞાન જલ, વર્તમાન કે કેવલી તો ઝલક હી રહે હૈ, પરંતુ સભી જીવ તીનો કાલ કે જબ જબ વો કેવલ જ્ઞાની હો ગયે, વો સબકા કેવલ જ્ઞાન કી પર્યાય ઉનકે જ્ઞાન મેં ઝલક રહી હૈ કે નહીં રહી, ઓર વો હર પર્યાય મેં પૂરે લોકાલોક જાન રહે, ક્યોંકિ વો તીન કાલ કી પર્યાય જાનતે હૈ, કેવલ દૂસરે કી એક હી કેવલ જ્ઞાન કી પર્યાય નહીં જાને, અનંતા કેવલી ઓર ઉનકે અનંત કાલ કી જો સાદી અનંત કાલ ઉનકા ભી કેવલ જ્ઞાન ચલેગા, તો ઉસ પ્રત્યેક પર્યાય મેં લોકાલોક જો જાનને મેં આ રહા હૈ વો સબકો એ કેવલ જ્ઞાની જાન રહે, કુછ ભી હૈ જૈસે મેને પહેલે ભી કહા થા ના, મંદિર મેં જાતે તો ભગવાન કે દોનો બાજુ દો મિરર હૈ, તો ઉસમે ક્યા દેખતા હૈ, એ મિરર કે ઇમેજ ઉસમે, ઉસકા ઇસમે, ઇસમે ઉસકા ઉસમે, તો કિતને હો જાતે હૈ, નેવર એન્ડિંગ. તો ઇનકે એક કેવલ જ્ઞાન મેં કિતના સારા જાન રહે, યે નહીં વો આત્મા કી કિતની અદ્ભુત સામર્થ્ય હૈ ઉસકી બાત પતા ચલતી. યહાં લિખા ના કેવલી ભગવાન કે જેમના જ્ઞાનમાં લોકાલોક જણાય એવા અનંતા કેવળી ભગવંતો કેવળ જ્ઞાનની એક પર્યાયમાં જણાય, તે કેવળ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયની તાકાત કેટલી? એક સમય કે પર્યાય કી ઇતની તાકાત, તો પૂરા જ્ઞાન ગુણ જો હમ કહેતે ને સામર્થ્ય, જો ત્રિકાલી જીસકો કહેતે હૈ, નેવર એન્ડિંગ અનાદિ સે જો તાકત હૈ ઓર અનંત કાલ તક રહેગી, કે આજ સે માન લેતે અનંત કાલ તક કેવલ જ્ઞાન ઉસમે સે નિકલતા રહે તો ભી વો શક્તિ કભી ખૂટને વાલી નહીં હૈ, તો ઉસમે તો કિતના સારા જ્ઞાન જીસકો કહેતે હૈ અસંકુચિત વિકાસ અથવાયેગી બાત આગે, ઇતના વિકાસ હૈ મર્યાદા વિના કા, તો એ જ્ઞાન કી તાકત કિતની હોગી. તો દેખો ઇસ તરહ સે હમ વિચાર કરેંગે ને તો અપની આત્મા કી હમે મહિમા આયેગી, પૂરે વિશ્વ સે અપની આત્મા કી મહિમા જાગૃત હોતી હૈ. યે ઉપર ભી અભી બાત આઈ થી ના, રસ રસ કી બાત હૈ, યાને ચૈતન્ય સ્વભાવ મેં આત્મા કા જો રસ હૈ, એક એક ગુણ કે ઉપર વિચાર કરતે હૈ તો વો કિતના અદ્ભુત રસ અપને અંદર સે ઉછાલ માર કર સમ્યક દર્શન કે પર્યાય ભી પ્રાપ્ત હો જાયગી ઇસ સમય, ક્યોંકિ હમ સ્વાધ્યાય કરતે હૈ તો સ્વાધ્યાય મેં જૈસે વો આત્મિક રસ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, અંદર કી તીવ્ર રુચિ ઉત્પન્ન હોતી હૈ, તો શાંતિ સે બેઠ જાઓ ઓર ઉસકે ઉપર વો ચિંતવન કરો ભી બાત નહીં, વો અપને આપ વિચાર આયેગી ઓર છૂટ ભી જાયેગી, કરને કી બાત હી નહીં રહેતી, વો કિસ પ્રકાર સે વિચાર કરના, અભી તો પઢ લિયા હમને, જ્ઞાન તો હુઆ હૈ ઉસકે બારે મેં, તો ઉસમે સે સહજ એકાદ વિચાર આતા હૈ ઓર ઉસકી ગહેરાઈ તક જાતે હૈ તો વિચાર ભી છૂટતા હૈ ઓર સમ્યક્ત્વ કી પ્રાપ્તિ હોતી. હમ યે જો શક્તિ હૈ ના, હમને તીન તીન પુસ્તકો મેં સે પઢતે થે, એક એક શક્તિ, આત્મ પ્રસિદ્ધિ, આત્મ વૈભવ, વો સારે શક્તિઓ કી પુસ્તક હૈ,
ઓર ઉસકે ઉપર ગુરુદેવ કે પ્રવચન હૈ,
ગુરુદેવ કે અલગ અલગ સમયો મેં હુએ જો પ્રવચન હૈ, એક પુસ્તક કા નામ હૈ આત્મ પ્રસિદ્ધિ, એક કા નામ હૈ આત્મ વૈભવ,
પ્રસિદ્ધિ હૈ વો,
પ્રસિદ્ધિ હૈ, આત્મ પ્રસિદ્ધિ,
આઈ એમ સોરી, આત્મ પ્રસિદ્ધિ, आत्मवैभव और ये प्रवचन रत्न
और ये प्रवचन रत्नाकर का 11वां भाग। तो हमने दोनों ने जब पढ़े थे 92 में, तो एक तीनों में से एक एक शक्ति तीनों में से पढ़नी, जो शक्ति सूर्य अभी सर्वज ने तो शक्ति है, एक किताब में से पढ़ी, फिर दूसरे में से पढ़ी, फिर इसमें से पढ़ी। तो प्रवचनकार तो वही है स्वामी जी, परंतु कितनी अपेक्षाओं से बताते हैं, तो ये बहुत अपने उसमें रस उत्पत्ति होती है, अध्यात्म के रस।
देखो यहाँ पर एक बहुत विशिष्ट बात बताई है, मैं आपसे पूछूंगा कि केवल ज्ञानी जो है वो कब की बात जानते हैं, भूतकाल की बात जानेंगे कि नहीं, भविष्य के भी जानेंगे, इस पे भी दो मत नहीं है। तो भविष्य में जो केवली होने वाले हैं, वो अनंत केवली होने वाले हैं, अब उनके ज्ञान में जो आ रहा है आएगा ख्याल में, और भूतकाल में जो अनंत हो गए उनके जो जानने में आ रहे, वर्तमान में जो जान रहे उनके भी ज्ञान में जो आ रहे, यानी ये कितने एक ज्ञान की पर्याय में कितनी ताकत है। हाँ? तो जब कहा जाता है कि ऐसे अनंत लोकालोक होते तो भी जाना जाता था, तो कोई ऐसा थोड़ी बताया। देखो ना, अभी ये तो बात नक्की है कि अभी तक अनंत हो गए और जितना भूतकाल है उससे भी आगे का जो भविष्यकाल है वो भी उससे बहुत बड़ा है। तो उसमें अनंत केवली होंगे और वो जो जानने वाले हैं वो अभी ये जान रहे। बोलो ख्याल में। देखो यहाँ कैसी बात लिखे, त्रणे कारणा अनंत केवली भगवंतो सहित सर्व अनंता द्रव्यो जानवामा आवे छे। अब आगे बढ़ेंगे, ये मिल गया ना, ये 60 नंबर के पृष्ठ पर ऊपर से पांचवी लाइन देखते हैं,
दूसरा पैराग्राफ।
हाँ जी,
दूसरे पैराग्राफ की अभी हम चौथी पांचवी,
दूसरा पैराग्राफ की पांचवी लाइन, 1 2 3 4 5। अच्छा, आहा हा, केवड़ी भगवान के जेमना ज्ञान मां लोकालोक जणाय एवा अनंता केवड़ी भगवंतो केवल ज्ञाननी एक पर्याय मां जणाय ते केवल ज्ञाननी एक समय नी पर्याय नी ताकत केटली निगोदिया जीवनो जीवने अक्षरना अनंतमा भागे ज्ञाननो विकास छे तेमा अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होई छे। किसके? जो मिनिमम मोस्ट ज्ञान का उघाड़ है, जिसको हम पर्याय ज्ञान कहते हैं, वो पर्याय ज्ञान कैसा है? अक्षर के अनंत में भाग जितना है उसमें भी जो अविभाग प्रतिच्छेद है वे भी अनंत अनंत है। तेने भिन्न भिन्न करीने भगवान केवड़ी जाने एवु केवल ज्ञानु अपार अपरिमित अनंतु सामर्थ्य छे। आहा हा, प्रत्येक जीव में आवी सर्वज्ञत्व शक्ति अंदर त्रिकाल पड़ी छे तेनी अंतर्मुख थई प्रतीति करे तो खबर पड़े ने।
देखो उसके बारे में गहराई से विचार होते तो अंतर्मुखता हो जाती है, विचार भी छूटता है, ख्याल नहीं है लेकिन अंतर्मुख थई प्रतीति करे, यानी आत्मा के लक्ष्य से उस पर विचार चलता है तो उसका विचार भी छूटकर आत्मा को पकड़ लेता है, अपनी आत्मा को। इन्हें स्वाध्याय की यही पद्धति है, हम स्वाध्याय करते हैं और जब जब हमें ऐसा लगता है कि अरे अंदर से रस परिपाक हो रहा है तो शांति से बैठ जाओ वहां, तो विचार भी जो योग्य है वो आएंगे, वो जो छूटने वो भी छूट भी जाएंगे और आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। करना तो वही है ना, नहीं तो स्वाध्याय करते और फिर दुनियादारी में चले जाते। तो जो कोई हमारा रस उत्पन्न हुआ है, जो कोई हमारी विशुद्धि बढ़ी है, वो तो उतने काल के लिए रहती है, बाद में चली जाती है, क्योंकि अन्य विचार अन्य विकल्प तो चालू हो जाएगी। तो जब कोई या कोई अभी दिन में हमने स्वाध्याय किया है और एकांत में बैठकर उस पर वही कोई एक गहरा वाक्य उस पर अपना विचार चलेगा तो उसको लेके, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको विकल्प उठाते ही रहे, और जरूरी नहीं कि बहुत सारा पढ़े तो ही। अभी ये वाक्य जो केवली भगवान के जमना ज्ञान मां, यही एक वाक्य इतना साइक हो गया, बस उस पर विचार करना, फिर वो विचार भी छूट जाता है और आत्मा की अनुभूति होती है। इस एक वाक्य की बहुत मुझे महिमा आती है।
अभी कह रहे हैं
स्तवन मा आवे छे के
प्रभु तुम जानग रीति सौ जगत देखता हो लाल, निज सत्ताए शुद्ध सौ ने पेखता हो लाल। ये कहते हैं आपके जानने की जो रीत है वो बहुत ही अद्भुत है कि सब जग को तुम जानते हो और निज सत्ता में तो तुम शुद्ध ही हो और सौने पेखता। पेखता का अर्थ क्या है?
पेखता है ने जानते
देखता
देखते
वही
हो।
है ना,
यानी सबको निज शुद्ध सिद्धा से सत्ता से शुद्ध देख रहे हैं आप,
यानी अन्य कोई अशुद्ध बात देखते हुए भी अपनी शुद्धता
नहीं अपनी शुद्धता की बात नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता से शुद्ध ही है ऐसा आप जानते हो।
निज सत्ता ये शुद्ध
सौने पेखता सबको निज सत्ता रूप से शुद्ध ही, यानी वो अपनी सत्ता से कभी पर सत्ता रूप हुआ ही नहीं है। त्रिकाली उसकी जो सत्ता है वो कायम है, तो निगोद को भी कैसे देखते है? तो उस निज सत्ता से शुद्ध देखते हैं।
देखो क्या कह रहे हैं, देखो निगोदना जीवपन सत्ताए शुद्ध त्रिकाल एक न्यायक भाव स्वरूप छे एम हे भगवान आपे केवल ज्ञान मा जोयूं छे। भाई आ पुण्य पाप ना भाव थाय ते कई आत्मा नथी, गंभीर बात छे प्रभु। निगोदना जीवपन स्वभावे शक्ति अपेक्षाए शुद्ध छे पर्याय मा शुद्धता छे, पन ए तो एक समय नी छे, एक समय नी पर्याय मा भूल छे, बाकी वस्तु तो अंदर त्रिकाल शुद्ध पड़ी छे।
देखो जब कहते हैं शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करो तो लोग पूछते हैं शुद्ध कहाँ है, हम तो विकारी है और हमें विकारी दिखाई देते हैं, यहाँ शुद्धता है कहाँ लक्ष्य करने को? तो शुद्ध कहने का मतलब किसको शुद्ध कहा? देखो हाँ, भेद को अशुद्ध कहते हैं और अभेद को शुद्ध कहेंगे, त्रिकाली को शुद्ध कहेंगे और एक एक पर्याय को अलग अलग देखो तो अशुद्ध कहेंगे। भेद पढ़कर देखा ना हमने, कहीं कहीं शुद्धता तो जीव कभी पुद्गल हुआ ही नहीं उसको शुद्ध कहेंगे, वो भी अपेक्षा आती है, कभी हुआ ही नहीं। जीव तो हमेशा जीव रूप ही है, वो तो गाथा 309 से 11 में आता है ना, जीवो ही तावत स्वक परिणाम ही परिणाम परिणम माना जीव एव, आत्म परिणाम ही परिणाम माना जीव एव। जीव कभी जीव रूप ही परिणमन करता है, कभी अजीव रूप हुआ ही नहीं है, तो वो जीव ही रहता है, वही उसकी शुद्धता, ऐसा भी आता है। और यहाँ तो त्रिकाली की अपेक्षा शुद्धता कहा, जो त्रिकाली ज्ञायक भाव जो है उसी को शुद्ध कहा, तो ये शुद्ध तो हर एक के पास है, उसका लक्ष्य करने वाली पर्याय अभी अधूरी है। भले अभी मिथ्या ज्ञानी जो है वही सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो अभी ज्ञान की पर्याय मिथ्या ज्ञान रूप चल रही है, तो उस ज्ञान में लक्ष्य किसका किया उसने? वो शुद्धता का। कौन से शुद्ध? वो त्रिकाली जो है स्वरूप, वही मैं हूं ऐसा उसने स्वीकार किया, उसको कहेंगे शुद्ध का लक्ष्य किया। तो शुद्ध का लक्ष्य करने से पर्याय शुद्ध हो जाएगी। ये पर्याय की अशुद्धता की बात ही नहीं यहाँ पर, त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध कहते हैं। देखो यहाँ फिर पढ़ेंगे हम, आप पढ़ते हैं?
आप पॉइंट बता दो ना,
देखो
पढ़ लो
क्या कहते हैं वहां पे, क्या कहते हैं? निगोदना जीवपन सत्ताए शुद्ध, ये सत्ता उसकी शुद्ध है, क्यों? त्रिकाल एक ज्ञायक भाव स्वरूप से, प्रत्येक जीव त्रिकाल एक ज्ञायक भाव स्वरूप है, वो पर्याय में निगोद है, मनुष्य है, तिरंच है, नारकी है, सिद्ध भगवान है, ज्ञायक भाव तो ज्ञायक भाव है, वो शुद्ध है। हे भगवान आपे केवल ज्ञान मां जोयू छे, भाई आप पुण्य पाप ना भाव थाय ते कहीं आत्मा न थी, ये तो पर्याय की अशुद्धता है। गंभीर बात छे प्रभु, यानी हम तो जीव को उतना मात्र ही देखते हैं, ये पापी है, पुण्यवान है, कुछ है, परंतु उससे भिन्न उसी समय त्रिकाली ज्ञायक भाव है वहां पर। निगोदना जीवपन स्वभावे शक्ति अपेक्षा शुद्ध छे, पर्याय में अशुद्धता छे, जो पर्याय में अशुद्धता होने पर भी त्रिकाली शक्ति अपेक्षा तो प्रत्येक जीव शुद्ध है, पण ए तो एक समय नी पर्याय छे। कौन सी पर्याय की अशुद्धता? एक समय नी छे। एक समय नी पर्याय मा भूल छे, बाकी वस्तु तो अंदर त्रिकाल शुद्ध पड़ी छे, पड़ी छे ने वो तो है, बस उसका नजर करने की देरी है, उसको कुछ शुद्ध करना नहीं है।
अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ मूल बात तो उनको यही बतानी है कि पर्याय में भले अशुद्धता हो, लेकिन द्रव्य तो हमेशा शुद्ध ही शुद्ध रहता है। इसलिए बोला वस्तु तो अंदर त्रिकाल शुद्ध पड़ी छे, यानी फालतू पड़ी ऐसी नहीं है, वो विद्यमान शुद्ध रूप से ही है। आवी निज आत्म वस्तु में एकाग्र थईने प्रवर्ते त्या सर्वज्ञ स्वभावनी प्रतीति प्रकट थाय छे। हूँ सर्वज्ञ स्वभावी छूं एम त्यारे निश्चय थाय छे, परंतु अल्पज्ञपनु माने त्या सुधी सर्वज्ञ स्वभावनी प्रतीति एटले विश्वास नथी, अर्थात त्या सुधी तेने सर्वज्ञ स्वभाव परिणत नथी। पहले आया था ना, दो बातें होती, एक शुद्ध परिणत सहित वाली बात आई थी और दूसरी शक्ति ने परिणत कही छे, और दूसरी बात ते आत्म दर्शनमयी छे। तो यहाँ शक्ति यहाँ आत्म ज्ञानमयी छे।
सभी परिणत में ये जो स्वभाव पर्याय उछलती है उसको परिणत कहा था उन्होंने।
होते शुद्ध एक ज्ञानानंद सच्चिदानंद प्रभु आत्मा छे एम निश्चय करी तेमा एकाग्र थता मारो सर्वज्ञ स्वभाव छे, अर्थात मारो केवल ज्ञान एटले एकलो ज्ञान स्वभाव छे एम केवल ज्ञान स्वभावनी श्रद्धा प्रतीति प्रकट थाय छे। आहाहा चौथे गुणस्थाने आम केवल ज्ञान स्वभावनी जेने प्रतीति प्रकट थई छे तेने श्रद्धा बने केवल ज्ञान प्रकट थयुं छे। ज्ञाननी केवल ज्ञान रूप पूर्ण दशा तो तेरमा गुणस्थाने थाय छे। पण पोताना शुद्ध सर्वज्ञ स्वभावनी प्रतीति थता पर्यायमां शक्तिनुं परिणमन थयुं, शक्ति परिणत थई तेने त्यां श्रद्धा बने केवल ज्ञान थयुं एम कहेवामां आवे छे। आवी वात हवे आमां केटलाकने एम लागे के धर्मनो आ कई जातनो उपदेश। अरे भाई त्रिकाळी ध्रुव अखंड एक न्यायक स्वभावी आत्मद्रव्यनी दृष्टि प्रतीति करता अज्ञानजन्य पर्णो महिमा उड़ी जाय छे, परिणाम स्वमां स्वस्वरूपमां विश्रांत थाय छे ठरे छे, ने आत्मामां दर्शन ज्ञान श्रद्धा सुख वीर प्रभुत्व आदि अनंत शक्तिओनुं निर्मळ निर्मळ परिणमन एक साथे उछळे छे प्रगटे छे। आज धर्म ने आज मोक्ष मार्ग छे। साध्यात्मानी आ रीते ज सिद्धि थाय छे, यानी जिसको साधने का है प्राप्त करना है उसको साध्यात्मा का और उसकी सिद्धि होती है, यानी वो प्राप्त हो जाता है। आ सिवाय व्रत पाड़वा दया पाड़वी इत्यादि व्यवहार राग काई धर्म नथी, धर्मनु साधने नथी। वास्तव में तो ते राग हुआ थी बंधन स्वरूप ज छे। अरे प्रभु रागनी ममतानी आड़ में तारा परम निधान तारी नजर में आयवा नहीं। वो कहते हैं ना एक तनखलू जे कहवाय ने, यानी एक घास का एक सूखा ऐसा काड़ी भी लेवे आंखों के सामने आने से सामने वाला दरिया भी या पर्वत भी ढक जाता है, वैसे यहाँ कह रहे हैं कि रागनी जे ममता छे, यानी राग जो तू कर रहा है वो तू चाहता है उसमें तेरे को रुचि है, तो उसकी आड़ में तुझे तेरा स्वरूप तेरा परम निधान ज्ञान में नहीं आ रहा है, नजर में आवतो नथी। आई कहे छे आत्मा में विश्वना विशेष भावों ने जाणवा रूपे परिणत एवा आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति छे। आमा एकली शक्ति नी वात नथी पण परिणत थयेली आत्मज्ञानमयी शक्ति नी वात छे। अंदर सर्वज्ञत्व शक्ति पड़ी छे तेनी परिणति प्रकट थई छे, ते आत्मज्ञानमयी छे। आत्मा ने एक ने जानवा रूपे परिणत थाय एवी सर्वज्ञत्व शक्ति छे, तो शू ते परिणति परने जानती नथी? परने जानती नथी एम क्या वात छे? परने जानवा प्रति ते सावधान नथी, परमा ते तन्मय नथी, परमा तन्मय थईने परने जानती नथी एम वात छे। तेथी परने जाने छे एम कहिए ते असद्भूत व्यवहार नहीं छे। वहां पर भी यही बात आई थी, असद्भूत व्यवहार नहीं, जेमा पर लोकालोक झड़के छे एवी पोतानी पर्याय ने पोतामा तन्मय थईने जाने छे। नियमसार गाथा 166 मा श्री कुंदकुंदाचार्य देव कहे छे, प्रभु केवड़ी देखे निजात्मा ने न लोकालोक ने, जो कोई भाखे एम तो तेमा कहो शो दोष छे। क्या कह रहे? देखो ये नियमसार में तो एकदम बिल्कुल जिसको कहते कि शुद्ध निश्चय ने की बात है, तो वहां कह रहे कि वो आत्मा जो है या केवली भगवान है वह अपने निज आत्मा को ही देखते हैं, अन्य किसी को नहीं देख रहे, लोकालोक को नहीं देख रहे। ऐसा अगर कोई देखता है यानी जानता है तो उसमें क्या दोष है? ऐसा बात पूछ रहे।
156 है,
देख लो।
नियम सर यहाँ नहीं है, मेरे
देखते हैं कल। निश्चय थी केवड़ी भगवान आत्म स्वरूप ने देखे छे, लोकालोक ने नहीं, एम जो कोई कहे तो तेनो दोष शो छे? अर्थात काई दोष नथी। आई निश्चय व्यवहार संबंधी एम समझवू के जेमा स्वनीज अपेक्षा होय ते निश्चय कथन छे, अने जेमा परणी अपेक्षा आवे ते व्यवहार कथन छे। माटे केवड़ी भगवान लोकालोक ने एटले परणे जाने देखे छे एम केमू ते व्यवहार कथन छे, अने भगवान केवड़ी स्वामी ने जाने देखे छे एम केमू ते निश्चय छे। गाथा नियमसार गाथा 169 मां कहूं छे के प्रभु केवड़ी जाने त्रिलोक अलोक ने नहीं आत्म ने, जो कोई एम भाके तो तेमा कहो शो दोष छे। व्यवहार थी केवड़ी भगवान लोकालोक ने जाने छे आत्मा ने नहीं, एम जो कोई कहे तो तेने दोष शो छे? अर्थात काई दोष नहीं, क्योंकि अपेक्षा जो है वो अपेक्षा लगा के कहेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं। नियमसारना शुद्धोपयोग अधिकारना श्लोक 285 मा मुनिराज कहे छे, तीर्थंकर खरेखर आखा लोक ने जाने छे। तीर्थनाथ आखा लोक ने जाने छे, अने तेवो एक अनघ एटले निर्दोष, निज सौख्य निष्ठ एटले निज सुखमा लीन स्वात्मा ने जाणता नथी। एम कोई मुनिवर व्यवहार मार्ग थी कहे तो तेने दोष नथी। अभी वहां जो जिस अपेक्षा से बात कही है वहां व्यवहार की अपेक्षा से मुख्यता करके उसकी बात बताई है, तो वो भी कथन कोई खोटा नहीं है, ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं। आपन आमा समझू शू? भगवान लोकालोक ने जानता नथी ए
आम ज्ञान
एक रह गया
आम ज्ञानी धर्मी पुरुष।
आम ज्ञानी धर्मी पुरुष जे विवक्षा थी बात कहे ते विवक्षा यथार्थ समझवी जोइए। निश्चय थी केवड़ी भगवान स्वात्मा ने जाने छे लोकालोक ने नहीं, अने व्यवहार थी केवड़ी भगवान लोकालोक ने जाने छे स्वात्मा ने नहीं। आम आ बन्ने कथन विवक्षा थी बराबर छे, पर आमा समझवू शू? भगवान लोकालोक ने जाणता नथी एम वात नथी, परंतु भगवान नो उपयोग खरेखर अंतर्मुख स्वरूप प्रत्यक्ष ने स्वरूप निष्ठ छे ते लोकालोक मां तन्मय नथी, लोकालोक मां जोड़ाई ने उपयुक्त नथी, परंतु નિજાનંદ રસલીન છે, જો લોકાલોકને તેમાં તન્મય થઈને જાણે તો નરકાદી ક્ષેત્રના દુઃખનું વેદન તેને થવાનું બને. પણ એમ છે નહીં, તેથી જ કહ્યું છે કે ભગવાન લોકાલોકને વ્યવહારથી જાણે છે. આનું નામ તે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ પૂર્ણ ભાવે પરિણત થતા જે કેવળ જ્ઞાન થયું તે આત્મજ્ઞાનમય છે, પરજ્ઞાનમય નથી. ગંભીર સૂક્ષ્મ વાત છે ભાઈ.
દેખો યહાં પૂર્ણ ભાવે પરિણત કહા વહાં કેવલ જ્ઞાન લિયા, ઓર ચૌથે ગુણસ્થાન મેં પરિણત ઇતના હી કહા, યાની વહીં સે ઉસકે જો જ્ઞાન ગુણ હૈ ઉસમે તો સર્વજ્ઞત્વ તો હૈ હી ભરા પડા. તો આત્મા કા જ્ઞાન હું આત્મજ્ઞાનમય હુઆ ના વો તો તો વહાં ઉસકી પરિણતિ ચાલુ હો ગઈ, પરંતુ પૂર્ણ પરિણતિ હોને પર કેવલ જ્ઞાન હો ગયા.
આત્માના જીવત્વ પ્રભુત્વ આદિ અનંત ગુણોમાં એક સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ પણ ભેગી પરિણમી રહી છે. અરે, લોકોને પોતાના અંતર નિધાનની ચૈતન્ય નિધાનની ખબર નથી. આહાહા, આ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની પૂર્ણ પ્રકટતા તે સર્વજ્ઞતા અથવા કેવળ જ્ઞાન છે. આ કેવળ જ્ઞાન તે સ્વલક્ષ્ય સ્વરૂપની એકાગ્રતાથી ખીલ્યું છે, કાંઈ પરના જગતના લક્ષ્ય ખીલ્યું છે એમ નથી.
દેખો ઉપર ક્યાં કહા, જૈસે જીવત્વ પ્રભુત્વ વગેરે વગેરે હૈ તો ઉસકે સાથ સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ ભી પરિણત હો રહી હૈ, પરિણમી રહી છે. એને સમ્યક તો ક્યુંકિ એ સારી નિર્મલ શક્તિઓ કી બાત હૈ ને, નિર્મલ પરિણમન વાળી શક્તિયા હૈ. તો આત્મા જ્ઞાન હોને પર, આત્માનુભવ હોને પર સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ અભી સર્વજ્ઞત્વ હુઆ નહીં હૈ, ઉસકી પરિણતિ ચાલુ હો ગઈ હૈ. યાની કે ના ઉસકે સાથ ઇસકી યે ભી ભેગી પરિણમી રહી છે, ઓર બાદ મેં લીગા પૂર્ણ પ્રકટતા તે સર્વજ્ઞતા હૈ, વો કેવલ જ્ઞાન.
થર્ડ લાઈન, આ કેવળ જ્ઞાન તે સ્વલક્ષ્ય સ્વરૂપની એકાગ્રતાથી ખીલ્યું છે, કાંઈ પરના જગતના લક્ષ્ય ખીલ્યું છે એમ નથી. ભાઈ, જગત છે માટે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ્યું છે એમ નથી. જગત તો ત્રિકાળ અનાદિ અનંત છે, જો તેને લઈને જ્ઞાન થતું હોય તો અનાદિથી જ પ્રત્યેક જીવને કેવળ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. પણ એમ છે નહીં. એ તો જીવ જ્યારે સ્વમાં એકાગ્ર થઈ સ્વદ્રવ્યને જ કારણપણે ગ્રહીને સ્વસ્થિત પરિણમે છે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય છે, અને તેમાં જગત આખું જ્ઞેયપણે ઝળકે છે. ત્યાં શક્તિનું પરિણમન સ્વાશ્રિત છે, પરાશ્રિત નથી. આત્મજ્ઞાનમય છે, પરજ્ઞાનમય નથી. આહા, સર્વજ્ઞતા એ તો શક્તિની સ્વ આશરે પૂરણ પ્રસિદ્ધિ છે. પણ શું થાય, સર્વજ્ઞ સાંભળતા જ અજ્ઞાનીઓને બહારના જ્ઞેયો પ્રતિ લક્ષ્ય જાય છે. પણ જેમાંથી સર્વજ્ઞ દશા ખીલી તે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પ્રત્યે લક્ષ્ય જતો નથી.
ક્યાં કહેના ચાહતે, જબ હમ સર્વજ્ઞ કહેતે તો સર્વજ્ઞ મે ક્યા ક્યા જાણતે હૈ તો અમારી લિસ્ટ શરૂ હોતી હૈ. હા, તો સબ પર પદાર્થો કી લિસ્ટ કરતે હૈ. તો સર્વજ્ઞત્વ યહાં ઉપર હી લિખા, સર્વજ્ઞતા એ તો શક્તિની સ્વ આશ્રય પૂરણ પ્રસિદ્ધિ છે. અપને શક્તિ કી પ્રસિદ્ધિ હૈ વો, ઓર વો સ્વ આશ્રય લિયા હૈ પૂર્ણ રૂપ સે. તો સ્વ આશ્રય લિયા હૈ તો અપને મેં વો કિતની શક્તિ હૈ ઇસકી ઉસકો પ્રસિદ્ધિ હુઈ હૈ, યાની ઉસને અપની પ્રસિદ્ધિ હુઈ હૈ વહાં પર. આત્મા મેં લીન હૈ પૂર્ણ રૂપ સે તો આત્મા કે જ્ઞાન કા પૂર્ણ વિકાસ હુઆ હૈ, વો અપને મેં રહેકર અપને મેં વિકાસ હુઆ હૈ, ઓર સર્વજ્ઞતા ઉસકો પ્રસિદ્ધ કરતી હૈ. તો યહાં હમ સર્વજ્ઞ કી મહતિ આતી તો વો ક્યા ક્યા જાણતે તો હમ બહાર કી લિસ્ટ કે, ક્યોંકિ શરૂ મેં તો ઉસી કો ઉસકો ભી જાણતે તો હૈ હી, પરંતુ વો અપને મેં રહેકર સબકો જાણતે ને. દેખો યહાં ક્યા કહેતે, સર્વજ્ઞ સાંભળતા જ અને સર્વજ્ઞ શબ્દ સુનતે હી અજ્ઞાનીઓને બહારના ગેયો પ્રતિ લક્ષ્ય જાય છે. पण
जेमा क्या जानते अनंत द्रव्य अनंत गुण अनंत उनकी पर्याय वगैरह वगैरह
हाँ पण क्या कहते हैं पण जेमाथी सर्वज्ञ दशा खिली छे ते सर्वज्ञत्व शक्ति सर्वज्ञ स्वभाव प्रत्ये लक्ष्य जतु नथी। जब हम सर्वज्ञत्व शक्ति की बात करते हैं सर्वज्ञ की बात करते हैं तो बाहर की महिमा आती है, अरे ये भी जानते वो भी जानते वो भी जानते, अरे परंतु वो जानते तो कहाँ से वो सामर्थ्य कहाँ से प्रकट हुआ, तो सर्वज्ञत्व शक्ति में से प्रकट हुआ। तो ये स्वभाव मेरा है उसमें ये सब जानने की कैपेसिटी अभी भी पड़ी है, तो उसके महिमा आने बिना आए बिना उपयोग वहां कैसे जाएगा। नहीं नहीं हमको उपयोग अंदर ले जाना, ये ले भी जाए ना कुछ बात नहीं होती, वो सहज चला जाता है। अपने आत्मा की ऐसी अद्भुत महिमा आएगी कि बिल्कुल पर वो विचार भी हट जाएंगे, कुछ हटाना नहीं कुछ घटाना नहीं कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, सर्वज्ञ सांभता अज्ञानियों ने बाहर ना गेयो प्रति लक्ष्य जाए छे, पण जेमाती सर्वज्ञ दशा खिली ते सर्वज्ञत्व शक्ति सर्वज्ञ स्वभाव प्रत्ये लक्ष्य जतु नथी। जब हम ये शक्तियों की बातें पढ़ते कोई भी शक्ति लो तो हमें पूरे आत्मा की उसमें से रुचि उसकी महिमा पैदा होगी तो लक्ष्य वहां चला जाएगा। ज्ञान का ऐसा सहस है कि जहां उसकी रुचि होती है जहां की महिमा होती है वहां उसका उपयोग चले। अब बाहर कोई बैंड बज रहा है तो बैठे यहां सुन रहे, लक्ष्य कहां से उपयोग कहां चला जाएगा, अरे क्या है वो है वहां जानने की उत्सुकता होगी। अब इतनी सारी केवल ज्ञान की पर्याय होते वो यहां इसको जानने की उतनी रुचि उत्सुकता हो रही कि नहीं हो रही है। परंतु अंतर लक्ष्य थया विना सर्वज्ञनी साची प्रतीति थती नथी। तो सर्वज्ञ भगवान की सच्ची प्रतीति हुई ऐसा कब कहेंगे, अंतर लक्ष्य से अपना अनुभव होगा तब, उसी समय उसने भगवान की प्रतीति की ऐसा कहेंगे। सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रतीति को श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है तो वो कब होती है, तो अंतर लक्ष्य होने पर, किए बिना नहीं लिखा थया बिना लिखा, यानी वो भी सहज होता है। करने से तो नहीं होता ना, हम कहेंगे चलो अभी अंतर्मुख हो जाओ तो हो जाओ, कहने के लिए क्या होता है। जैसे लोग कहते कि हम ध्यान करने को बैठते तो हमें विकारी नजर में आते हैं, किसी को अंधेरा दिखता है किसी को और क्या होता है। तो यहाँ कहते हैं अंतर लक्ष्य थया विना सर्वज्ञनी साची प्रतीति थती नथी। पढ़ेंगे
आप, अरे પોતાના સ્વરૂપના ભાન વિના જીવ અનંત કાળથી રખડે છે, આહા સાતમી નરકમાં તે અનંતવાર જન્મ્યો મર્યો છે। જો બ્રહ્મદત્ત નામના ચક્રવર્તી મરીને સાતમે નરકે ગયા છે, ત્યાં મહાદુઃખના વેદનમાં પડ્યા છે, અહીં 700 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવીને અહીંની કાલ્પનિક સુખમાં સુખના ફળમાં 33 સાગરના આયુની સ્થિતિ બાંધી તેવો સાતમી નરકના ઘોર દુઃખના ક્ષેત્રમાં ગયા છે। 10 કોડાકોડી પલ્લ્યોપમનો એક સાગર છે અને એક પલ્લ્યોપમ કાળના અસંખ્યાતમાં ભાગમાં અસંખ્યાત અબજ વર્ષ સમાય છે। આત્મા અંદર પૂરન આનંદનું નિધાન પ્રભુ છે, તેનો આદર કરી તેનો અનાદર કરી ભોગના સુખનો આદર અને સ્વીકાર કર્યો તો તે કલ્પિત સુખના ફળમાં સાતમી નરકમાં 33 સાગરોપમની સ્થિતિમાં તે જીવ મહાન દુઃખ ભોગવી રહ્યો છે। ભોગમાં સુખ નથી ભાઈ, ભોગ તો રોગ છે દુઃખ છે ને તેનું ફળ પણ દુઃખ છે। આ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીને કુરુમતી નામની એક રાણી હતી, તેની 1000 દેવો સેવા કરતા, તેનું શરીર અતિ સુંદર રૂપાળું અને કોમળ હતું। ચક્રવર્તીએ હીરાના પલંગમાં સુતા સુતા અંતિમ સમયે કુરુમતી કુરુમતી એવા આર્ત પોકારો સહિત પ્રાણ છોડ્યા અને તે જીવ સાતમી નરકે પડ્યો। અહીં કોઈ એમ તર્ક કરે કે આમાં તો કાકડીના ચોરને કટાર મારવા જેવી વાત છે, પણ એમ નથી ભાઈ, ભોગમાં એટલે મિથ્યાત્વ સહિત અતિ તીવ્ર આસક્તિના મહા અશુભ પરિણામ તેને હતા. પોતાના સર્વજ્ઞ સ્વભાવનો અનાદર કરી તીવ્ર ભોગાસક્ત બની તે જીવ સાતમી નરકમાં ગયો છે. આહા હા, પોતાના સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્માનો આશ્રય લઈ પરિણમે તો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર નિર્મળ પરિણતિ સહિત આનંદરૂપી પુત્રનો જન્મ થાય છે. અને વિષયમાં સુખબુદ્ધિ કરી ભોગ વિષયના મહા તીવ્ર પરિણામનું સેવન કરે તો એના ફળરૂપે મહાદુઃખના પરિણામ ઉત્પન્ન થઈને જીવ હલકી ગતિમાં ઉપજે છે.
देखो ऊपर दुख भोग भी रहो छे कहा है और उसकी आयु भी 700 वर्ष की है. वो तो थोड़े काल ही पहले हुआ होगा ना 700 वर्ष की है.
नहीं नहीं,
12वां चक्रवर्ती कब हुआ था, कौन से तीर्थंकरों के पश्चात?
ओ, ओ, ओ.
तो अभी 33 सागर तो पूरे नहीं हुए है. हाँ, ख्याल में आई क्या मैं क्या बताना चाहती हूँ? यहाँ क्या लिखा है, वो अभी सातवें, देखो दूसरे पैराग्राफ में दूसरी लाइन, ते जीव महान दुखो भोगवी रह्यो छे, रह्यो छे ना, अभी हो गया ऐसा नहीं कहा, अभी वर्तमान में वो सातवें नरक में है अभी वर्तमान में, क्योंकि 700 वर्ष की आयु थी, 700 वर्ष ने अभी लास्ट में हुआ होगा ना, ख्याल में आई ना बात? एक्चुअली उसका एग्जैक्ट काल तो मेरे ख्याल से नेमिनाथ के पश्चात वाला था, कभी था याद नहीं, देखना पड़ेगा,
पहले होना चाहिए,
नहीं वो मिल जाएगा.
12वां था ना,
7, 12वां होगा, उसके पश्चात कौन हुआ चक्रवर्ती, कल देख के बताएंगे हम वो सभी चक्रवर्तियों के नाम वगैरह अपने पास. वो चक्रवर्ती का पुण्य तो सम्यक दृष्टि के बनता है. हाँ, तो हो सकता है जन्म से सम्यक दृष्टि हो, तो भी जो चक्रवर्ती पद में, हाँ बाद में मिथ्यात्व में जाते रहते ना. देखो हमने तो अभी देखा ना, सुबह हम देख रहे कितने जीव सम्यक तो से मिथ्यात्व मिथ्यात्व. हाँ, तो सम्यक भी सम्यक दृष्टि था तभी उसको चक्रवर्ती का पुण्य बंधा, ऐसा लेना. हाँ, सम्यक दृष्टि है जन्म से. हाँ, सम्यक तो सम्यक दृष्टि को ही वो पुण्य बनता है. हाँ, परंतु वो जन्म से वो बात नहीं लेना, उसमें होगा भी ऐसे, उसमें कोई निषेध भी नहीं है उसका.
आहा हा, भगवान आत्मा नो सर्वज्ञ स्वभाव छे तेनु अंतर्मूर्त ध्यान करे તો કેવળ જ્ઞાનની જળહળતી જ્યોત પ્રકટ થાય છે. અને તેથી અને તેની સાથે અનંત અતિન્દ્રિય આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે. દરેક સમયે તે પર્યાય ભિન્ન ભિન્ન પ્રકટ થાય છે, બીજે સમયે એવી ને એવી પર્યાય પ્રકટ થાય છે, પણ એની એ નહીં. એ વાત સમજમાં આવી ને? એની એ નહીં, એટલે વહી કી વહી નહીં, વૈસી કી વૈસી આવી ગઈ. આહા હા, આવા નિજ નિધાનને ઓળખ્યા વિના મિથ્યાત્વનું સેવન કરીને પારાવર દુઃખમય સંસારમાં જીવ પરિભ્રમે છે. એના દુઃખને કોણ કહે, તે વચન અગોચર છે. આઈ ન કહી શકાય, આઈ ન શકાય, કહી ન શકાય એવું છે. જો હોલા નામના એક જાતના પક્ષી હોય છે, હોલા સ્વહમ સ્વહમ એવો અવાજ કરે છે, પણ સ્વહમ એટલે શું એનું એને ક્યાં ભાન છે? સ્વહમ એટલે હું સિદ્ધ સમાન, સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન છું, સિદ્ધ સમાન સદાપદ મેરો, એમ આવે છે ને? હા, પણ એ પણ શુભ વિકલ્પ છે. તેમાંથી સો એટલે સિદ્ધ પરમાત્મા કાઢી નાખીને અહમ હું છું એમ સ્વલક્ષ અંતરલક્ષ કરીને સ્વાનુભવ કરતા પરિણમન થાય છે, ત્યારે સર્વજ્ઞત્વ શક્તિની તેને પ્રતીતિ થાય છે. આહ, સર્વજ્ઞ શક્તિથી ભરેલો પોતાનો પૂરણ પરમાત્મા સ્વભાવ તેની અંતર પ્રતીતિ પરિણમન થઈને થાય. શું કહે છે કે પોતાનો પૂરણ પરમાત્મા સ્વભાવ તેની અંતર પ્રતીતિ પરિણમન થઈને થાય તેનું નામ સમ્યક દર્શન છે. આહા, તે કાળે અનુભવનો રસ આનંદ રસ પ્રગટ્યો પછી કોણ પૂછે છે કે કોણ કરતા અને કોણ કરણી ને કોણ કરમ, એને ઉસ સમય કોઈ ભેદ નહીં રહેતે. ઇતની બાત બતા,
નહીં કોઈ વિકલ્પ અન્ય રહેતે હૈ, બસ અતિન્દ્રિય આનંદ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ.
અહીં સર્વજ્ઞ સર્વજ્ઞ શક્તિને પરિણત કહેલ છે. પહેલા પણ આત્માને જ્ઞાન માત્ર કહ્યો હતો, ત્યાં શિષ્યને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે પ્રભુ આત્માને જ્ઞાન માત્ર કહેતા તો એકલું જ્ઞાન આવ્યું તો એકાંત થઈ જશે કે કેમ, ત્યારે શ્રી ગુરુએ સમાધાન કર્યું હતું, સાંભળ, આત્માને જ્ઞાન માત્ર કહેતા એકાંત થઈ જતું નથી પણ અનેકાંત સિદ્ધ થાય છે, કેમ કે જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં અનંતા ધર્મો સાથે આવી જાય છે, કેમ કે જ્ઞાન અસ્થિપણે છે, જ્ઞાન વસ્તુપણે છે, જ્ઞાન પ્રમેયપણે છે, ન્યાયકપણે છે, એમ જ્ઞાન માત્ર કહેતા તેમાં અનંત ધર્મો ભેગા આવી જાય છે, માટે અહીં એકાંત થતું નથી. જ્ઞાન માત્ર ભાવનું પરિણમન થતા જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં સાથે અનંત શક્તિઓ ઉછળે છે, ભેગી સર્વજ્ઞ શક્તિ પણ પરિણત થાય છે. આહા, એ પરિણામમાં પરનું ને રાગનું કરતાપનું તો દૂર રહો, પણ હું પરને અને રાગને જાણું એ મારા ધ્યેય છે એમે નથી. ઝીણી વાત છે પ્રભુ, પણ આ પરમાર્થ સત્ય વાત છે. લોકોના સદભાગ્ય પરમ સત્ય વાત પ્રસિદ્ધિમાં આવી છે.
વર્તમાન મેં લોગો કા ઇતના ભાગ્ય હૈ કે યે બાત ઇતની સરળ કરકે સમજાઈ, નહીં તો યે એસી અદ્ભુત વાર્તા સુનને કો ભી નહીં મિલતી.
અભી યહીં રુકેંગે હમ. જાવાણી કે જ્ઞાન થઈ સૂજે લો કાલો, સો વાણી માં સકણમો સદા.